पृष्ठ संख्या 7, शीर्षक है जेनोफेनिज। ये स्वतंत्र विचारक और बुद्धिवादी थे तथा चुभते हुए व्यंग कसने में निपुण थे। ये ईश्वर को निराकार और अंतर्यामी मानते थे और मानव कल्पित सगुण ईश्वर का खंडन करते थे। इनका यह कथन प्रसिद्ध है कि यदि बैलों, घोड़ों और शेरों के हाथ मनुष्य के समान होते और उन हाथों से वे चित्र बना सकते तो वे ईश्वर को क्रमशः बैल, घोड़े और शेर के रूप में चित्रित करते। इनके अनुसार निराकार नित्य, अपरिणामी और अंतर्यामी है। ईश्वर सब में है और सब कुछ ईश्वर में है। अगला शीर्षक है पार्मेनाइडीज। इनका समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी है। प्लेटो के अनुसार जब एथेंस में इनका वार्तालाप सॉक्रेटिस से हुआ तब इनकी अवस्था 65 वर्ष की थी। पार्मेनाइडीज ने कविता में अपनी दार्शनिक कृति लिखी है जिसमें ये स्वर्ग पहुँचते हैं और वहाँ एक देवी इनको सत्य का दर्शन कराती है। पार्मेनाइडीज का दर्शन हेरेक्लाइट्स के क्षणिकवाद का तीव्र खंडन करता है। इनके अनुसार तत्व सत है, परिणाम या गति नहीं। तत्व शुद्ध सत्ता अर्थात प्योर बीइंग है। वह एक अद्वितीय, नित्य, अपरिणामी, अविनाशी और कुटस्थ है। गति या परिवर्तन भ्रांति है, यह व्यवहार का मार्ग है। शुद्ध सत परमार्थ का मार्ग है। पार्मेनाइडीज का शुद्ध सत शुद्ध चित्त भी है। वह विशुद्ध विज्ञान रूप है। सत्ता और बोध एक ही है। सत सदा समरस या एक सा रहता है। उसमें कोई विक्रिया या परिणाम नहीं होता। वह निरपेक्ष, पूर्ण, स्वयंभू और नित्य है। पृष्ठ संख्या 8। गति, परिवर्तन या परिणाम केवल भ्रांति है। वस्तुतः गति असंभव है। गति या परिवर्तन का अर्थ है असत और सत। कभी असत नहीं हो सकता। यदि सत की परिणति हो तो वह या तो सत के रूप में होगी या असत के रूप में। यदि सत की परिणति सत में है तो यह कोई परिणति नहीं हुई और यदि सत की परिणति असत में हो तो यह असंभव है। यदि सत की उत्पत्ति असत से हो तो यह असंभव है क्योंकि शून्य से किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती और यदि सत की उत्पत्ति सत से हो तो यह कोई उत्पत्ति नहीं हुई क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात जो वस्तु सत या विद्यमान है उसे फिर उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता। इससे सिद्ध हुआ कि गति या परिणाम भ्रांति है और तत्व सदा अपरिणामी एवं कुटस्थ है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि वस्तुतः इस विश्व की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। यह संसार गतिशील है और भ्रम मात्र है। इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं। इसकी कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं। यह पार्मेनाइडीज का मायावाद या अजातिवाद है। सत अविभाज्य है, उसके विभाग या खंड नहीं हो सकते। वह व्यापक है, अतः परमाणुओं को सत नहीं कहा जा सकता, वे भी भ्रम मात्र हैं। सत एक या अद्वितीय और निरपेक्ष है। दो सत मानने पर दोनों सापेक्ष हो जाएंगे और निरपेक्ष नहीं रह सकेंगे। फिर वे दोनों एक दूसरे की सत्ता को नष्ट कर देंगे। समस्त द्वैत भेद या प्रपंच भ्रांति मात्र है। तत्व अद्वैत सत ही है। सत पूर्ण है, उसकी कोई इच्छा या कामना नहीं है, अन्यथा वह अपूर्ण हो जाएगा। वह आप्त काम है। सत अनंत है, उसे शांत मानने पर वह विनाशी और असत बन जाएगा। वह अपरिणामी और कुठस्थ है। सत स्वयंभू है, उसका स्वयं का कोई कारण नहीं है। वह सबका कारण है, उसके कारण की कल्पना करने पर अनावस्था दोष आता है। सत विज्ञान रूप है, वह जड़ नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ता असत की द्योतक है। पार्मेनाइडीज को यूरोपीय विज्ञानवाद का संस्थापक कहा जा सकता है। उनके अनुसार सत और चित एक ही है। उन्हें व्यवहार और परमार्थ का भेद भी मान्य है। वे परम अद्वैतवादी हैं। उनका सत विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है। पृष्ठ संख्या 9। प्लेटो और एरिस्टोटल भी पार्मेनाइडीज को विज्ञानवादी ही मानते हैं, किंतु कुछ आधुनिक विद्वान इस बात से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार पार्मेनाइडीज का सत भौतिक या जड़ द्रव्य है। पार्मेनाइडीज ने सत को अपनी कविता के एक स्थल में गति शून्य गोल द्रव्य कहा है। इस स्थल को आधार मानकर प्रोफेसर बर्नेट और जेलर ने सत को भौतिक मान लिया है, किंतु यह अनुचित है। पार्मेनाइडीज ने सत की गोल द्रव्य से तुलना की है, उसे गोल द्रव्य रूप नहीं बताया है। किसी भी व्यक्ति को गधा कहने से वह वास्तव में गधा नहीं हो जाता। और फिर पार्मेनाइडीज के सारे काव्य की केंद्रीय विचारधारा को न देखकर केवल एक स्थल पर विशेष आग्रह देना भी उचित प्रतीत नहीं होता। प्रोफेसर गामपर्ज और एडमसन ने पार्मेनाइडीज के सत को अनंत विज्ञान और अनंत जड़ का सम्मिश्रण बताया है। प्रोफेसर वेबर का कथन है कि पार्मेनाइडीज और हेरेक्लाइट्स का अद्वैतवाद उस संगमरमर के खंड के समान है जिसको हाथ धोने का पात्र या देवता की मूर्ति का रूप दिया जा सकता है। उसका विकास जड़ाद्वैतवाद में भी किया जा सकता है और विज्ञान द्वैतवाद में भी। हमारे मत में पार्मेनाइडीज को विज्ञान द्वैतवादी मानना ही उचित है। प्लेटो और एरिस्टोटल का इस विषय में अनुकरण करना योग्य है। वे दोनों भी पार्मेनाइडीज को विज्ञान द्वैतवादी ही मानते थे। पार्मेनाइडीज के अनुयायी मेलिसस ने भी इसी की पुष्टि की है। यह सत्य है कि विज्ञान द्वैतवाद पार्मेनाइडीज में उस विकसित रूप में नहीं मिलता जिसमें वह प्लेटो या स्पिनोजा में मिलता है, और यह स्वाभाविक भी है। हेरेक्लाइट्स और पार्मेनाइडीज दोनों ने इंद्रिय अनुभूत का विश्वास न करके तत्व को विज्ञान में खोजा। हेरेक्लाइट्स का ध्येय औन्नत मार्ग से उन्नत मार्ग की ओर और पार्मेनाइडिस का ध्येय व्यवहार से परमार्थ की ओर जाने का था। दोनों ने तत्व को विज्ञान स्वरूप माना। हेरेक्लाइट्स ने विज्ञान के सार्वभौम नियम की और पार्मेनाइडिस ने चिद्रूप शुद्ध सत्ता की प्रतिष्ठा की। दोनों ही विज्ञान द्वैतवादी थे, किंतु दोनों के निष्कर्ष भिन्न थे। हेरेक्लाइट्स के अनुसार नित्यत्व भ्रांति है और पार्मेनाइडिस के अनुसार अनित्यत्व और परिणाम भ्रांति है। अगला शीर्षक है जीनो। जीनो इलिया के निवासी और पार्मेनाइडिस के पट शिष्य थे। उनके प्रखर तर्कों के प्रहार भयंकर होते थे। उन्होंने विरोधियों का प्रबल खंडन करके भेद प्रपंच और गति को भ्रांति मात्र सिद्ध किया। भेद प्रपंच के विरुद्ध उनके तर्क इस प्रकार हैं। पृष्ठ संख्या 10। यदि सत अनेक रूप हो तो उसे एक साथ अणु से भी अणु और महान से भी महान होना चाहिए। अनेक रूप होने के कारण उसे विभाज्य और सत होने के कारण अविभाज्य होना चाहिए, किंतु ये दोनों विरोधी धर्म एक साथ नहीं रह सकते। अतः सत अद्वितीय है और भेद प्रपंच मिथ्या है। यदि सत अनेक रूप हो तो उसे एक साथ शांत और अनंत दोनों होना पड़ेगा, जो असंगत है। यदि सत अनेक रूप हो तो उसकी सत्ता आकाश में माननी पड़ेगी और आकाश से परिच्छिन्न होने के कारण वह सत नहीं रहेगा। गति के विरुद्ध जीनों के तर्क ये हैं। गति का प्रारंभ ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के पहले इस दूरी की आधी दूरी तक जाना पड़ेगा और इस आधी दूरी के पहले इसकी भी आधी दूरी तय कर लेनी पड़ेगी और इस प्रकार आधी दूरी की संभावना सदा बनी रहने के कारण गति का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। शांत समय में यह अनंत दूरी तय नहीं की जा सकती। एकिलीज ग्रीस का सबसे तेज दौड़ने वाला पौराणिक व्यक्ति। एकिलीज भी दौड़ में एक कछुए के आगे नहीं निकल सकते। यदि कछुआ उनसे पहले चल चुका हो, क्योंकि एकिलीज क नामक स्थान पर पहुँचेंगे, तब तक कछुआ ख पर पहुँच जाएगा और जब एकिलीज ख पर पहुँचेंगे तब तक कछुआ ग पर पहुँच जाएगा और इस प्रकार गति का अंत नहीं होगा। वेग से उड़ता हुआ तीर भी वस्तुतः स्थिर है, क्योंकि गति का आरंभ नहीं हो सकता। अतः न गति का आरंभ है, न मध्य और न अंत, इसलिए गति भ्रांति है। अगला हेडिंग है मेलिसस। जिन्होंने विरोधियों का खंडन करके पार्मेनाइडिस के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मेलिसस ने पार्मेनाइडिस के तर्कों को और अधिक पुष्ट किया। पार्मेनाइडिस के सत्य के विषय में कुछ आधुनिक विद्वानों को जो भ्रांति हो गई है कि यह सत भौतिक है या कि यह भौतिक और विज्ञान रूप दोनों हो सकता है, और जिस भ्रांति का वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं उस भ्रांति का मेलिसस ने निराकरण कर दिया था। मेलिसस ने सत्ता शून्य आकाश का खंडन करके सत्य को अनंत विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। पृष्ठ संख्या 11। शून्य प्रतीत होने वाला आकाश भी अनंत सत्य से पूर्ण है, और यह तभी हो सकता है जब यह सत्य भौतिक न होकर विज्ञान रूप हो। हेरेक्लाइट्स का परिणाम अपरिणामी अधिष्ठान के बिना संभव नहीं। पार्मेनाइडीज का सत्य पूर्ण निर्गुण होने के कारण शून्यवत प्रतीत होता है, अतः इन दोनों का समन्वय होना आवश्यक था। यह कार्य अपने अपने दृष्टिकोणों से एम्पेडोक्लीज, एनेक्सिगोरस और ल्यूसिपस तथा डेमोक्रिट्स ने किया। इस समन्वयात्मक कार्य में हेरेक्लाइट्स के परिणाम और पार्मेनाइडीज के सत्य के साथ माइलेशियन मत के द्रव्य का भी मिश्रण कर दिया गया। अगला शीर्षक है एम्पेडोक्लीज। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। एम्पेडोक्लीज का व्यक्तित्व महान था। उनको राज्य सिंहासन भेंट किया गया था, किंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। वे देव तुल्य पूज्य समझे जाते थे, और जहाँ कहीं भी वे जाते थे, हजारों नर नारी उनके उपदेशों को सुनने के लिए लालायित रहते थे। एम्पेडोक्लीज पार्मेनाइडीज के समान सत्य को नित्य और अविकारी मानते हैं। सत्य की न उत्पत्ति है और न विनाश। वे हेरेक्लाइट्स के इस बात से सहमत हैं कि संसार में परिणाम और साम्राज्य अखंड है। माइलेशियन दार्शनिकों में थेलिज ने जल को और एनेक्जिमेनिज ने वायु को परम तत्व माना था। हेरेक्लाइट्स ने अग्नि को परम तत्व स्वीकार किया था। एम्पेडोक्लीज ने पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु रूपी चारों महाभूतों को सत्य मान लिया। ये चारों महाभूत नित्य, अविकारी और मौलिक हैं। इनकी न उत्पत्ति होती है और न इनका विनाश होता है। इनका केवल संयोग और वियोग होता है। इस संयोग वियोग को सिद्ध करने के लिए एम्पेडोक्लीज ने दो धर्मों की कल्पना की। एक को उन्होंने प्रेम कहा और दूसरे को विरोध। उनके प्रेम को आकर्षण और विरोध को विकर्षण कहा जा सकता है। प्रेम संयोगजनक है और विरोध वियोग का। इन चारों महाभूतों के संयोग और वियोग के कारण सांसारिक पदार्थों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। आरंभ में ये चारों महाभूत दिव्य लोक में संयुक्त थे। जब विरोध ने प्रेम पर विजय प्राप्त कर ली, तब इनका परस्पर वियोग हो गया। तब से ही सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम वायु वियुक्त हुआ, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। जब प्रेम का प्राधान्य होगा, तब ये महाभूत फिर दिव्य लोक में संयुक्त हो जाएंगे। यह प्रलय की अवस्था होगी। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय का क्रम चलता रहेगा। एम्पेडोक्लीज के विचारों का न्याय वैशेषिक के विचारों से बहुत कुछ साम्य स्पष्ट है। पृष्ठ संख्या 12। किंतु दोनों में कई महत्वपूर्ण भेद भी हैं। न्याय वैशेषिक में आत्मा और परमात्मा तथा अदृष्ट का विशिष्ट स्थान है। एम्पेडोक्लीज के दर्शन में इनका कोई स्थान नहीं, और न उन्होंने अपने महाभूतों को परमाणु रूप माना। इसके लिए ग्रीक दर्शन को एनेक्जेगोरस, ल्यूसिपस और डिमोक्रिट्स की प्रतीक्षा करनी पड़ी। अगला शीर्षक है एनेक्जेगोरस, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। एनेक्जेगोरस सत्य को नित्य, अविकारी और उत्पत्ति विनाश रहित मानने में पार्मेनाइडीज और एम्पेडोक्लीस से सहमत हैं। उत्पत्ति को संयोग और विनाश को वियोग मानने में वे एम्पेडोक्लीस से सहमत हैं, किंतु एनेक्जेगोरस के अनुसार एम्पेडोक्लीस के 4 महाभूत मौलिक तत्व नहीं हैं, ये भी मौलिक तत्वों के संयोग से बने हैं। ये मौलिक तत्व अनंत हैं। इनको एनेक्जेगोरस ने बीज कहा है। ये बीज अपने मौलिक रूप में विश्व भर में व्याप्त थे। इनमें सहसा वेग से गति उत्पन्न हुई, जिसके कारण समान बीज परस्पर आकर्षित होकर एक दूसरे से मिलते चले गए और इस प्रकार इस सृष्टि का निर्माण हुआ। किंतु समस्या यह थी कि यह गति कैसे उत्पन्न हुई। इस समस्या का समाधान करने में एनेक्जेगोरस को सहसा एक ऐसी सुंदर कल्पना सूझी, जिसके कारण ग्रीक दर्शन में आज तक उनको प्रतिष्ठित स्थान मिला हुआ है। एनेक्जेगोरस ने यह स्पष्ट स्वीकार किया कि गति जड़ बीजों में स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकती। गति का कारण चेतन तत्व ही हो सकता है, जो शक्तिमान है। इस चित शक्ति युक्त तत्व को एनेक्जेगोरस ने परम विज्ञान अर्थात नाउच को इस रूप में रखा है, किंतु दुख की बात है कि स्वयं एनेक्जेगोरस इस परम विज्ञान से लाभ नहीं उठा सकें, वे भी इसका विशद विवेचन नहीं कर सकें। इसका मुख्य कार्य बीजों में गति उत्पन्न करने तक ही सीमित रह गया। इसके लिए ग्रीक दर्शन को सोक्रेटिस की प्रतीक्षा करनी पड़ी। पृष्ठ संख्या 13। प्लेटो ने सोक्रेटिस के मुंह से कहलाया है, मैंने एक व्यक्ति को एनेक्जेगोरस की पुस्तक पढ़कर कहते हुए सुना कि उनके अनुसार इस विश्व की उत्पत्ति और उसके सामंजस्य का कारण परम विज्ञान है। मुझे यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई, किंतु थोड़ी देर बाद ही मेरी आशाओं पर पानी फिर गया जब मुझे ज्ञात हुआ कि उन्होंने अपने परम विज्ञान का कोई उपयोग नहीं किया। जिस प्रकार प्रोफेसर बर्नेट पार्मेनाइडीज के सत को जड़ और प्रोफेसर गामपर्ज उसे जड़ चेतन मानते हैं, उसी प्रकार भाग्य इन विद्वानों के हाथों एनेक्जेगोरस के परम विज्ञान को भी मिला है। प्रोफेसर बर्नेट ने इसे अत्यंत सूक्ष्म जड़ तत्व कहने की कृपा की है और प्रोफेसर गामपर्ज ने इसे न तो सर्वथा जड़ और न सर्वथा चेतन बतलाया है। जिस प्रकार मेलिसस, प्लेटो और एरिस्टोटल पार्मेनाइडीज के सत्य को विज्ञान स्वरूप समझते थे, उसी प्रकार प्लेटो और एरिस्टोटल एनेक्जेगोरस के परम विज्ञान को, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, विज्ञान रूप मानते थे। उनकी शिकायत यही थी कि एनेक्जेगोरस अपने इस परम विज्ञान का सदुपयोग नहीं कर सकें। प्लेटो का उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है। एरिस्टोटल का कथन यह है कि एनेक्जेगोरस ने अपने परम विज्ञान से वही काम लिया जो नाटककार अपने नाटक में ऐसी विषम परिस्थिति आ जाने पर जिसे वे सुलझा नहीं सकते भगवान के हस्तक्षेप से लेते हैं, अर्थात भगवान के हस्तक्षेप से कोई अनहोनी घटना घटाकर विषम परिस्थिति सुलझा लेते हैं। इस परम विज्ञान का कार्य अपने स्वर्ग से उतरकर उस दुखपूर्ण ग्रंथ को काट देना था जिसे सुलझाने का अन्य कोई साधन नहीं था, अर्थात बीजों में गति का संचार कर देना ही इसका कार्य था।